ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञान
तो कर्मयोग की व्याख्या भगवान अर्जुन को इस अध्याय में ये जो कुछ चंद श्लोक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, न केवल व्यक्तिगत रूप से अर्जुन के लिए अपितु पूरे समाज के लिए, मानव समाज के लिए। और भगवान ने कहा सततम, केवल कुछ काल के लिए नहीं, मानव समाज के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए और नित्य रूप से। तो पिछले श्लोक में भगवान ने तीन कठिन प्रस्ताव रखे थे। भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि अपने नियत कर्म तो तुम्हें करने ही हैं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जिसे कहते हैं, और वो नियत कर्म करते करते तुम्हें समसिद्धि प्राप्त करनी है, न केवल सिद्धि अपितु सम सिद्धि प्राप्त करनी है। और सम सिद्धि प्राप्त करने का लक्षण क्या होगा? एक लोक शिक्षा, कि तुम्हारे उदाहरण से अन्य जो साधारण जन हैं वो कैसे सम सिद्धि प्राप्त करते हुए, अपने नियत कर्म करते हुए लोक शिक्षा के द्वारा सम सिद्धि प्राप्त। तो हमने हमारे पिछले गीतामृत में लोक संग्रह इस शब्द पर हमारा गीतामृत अंत किया था, जिसकी व्याख्या हमने संक्षिप्त रूप में ये की थी कि भगवान ने जो पिछले श्लोक में लोक संग्रह शब्द इस्तेमाल किया है तो सामान्य लोगों को शिक्षित कैसे करना, ये है लोक संग्रह शब्द की संक्षिप्त रूप में व्याख्या। और इसमें उदाहरण दिया था महाराज जनक का, कि कैसे महाराज जनक वो एक गृहस्थ क्षत्रिय, न केवल क्षत्रिय बल्कि एक राजा, मिथिला देश के राजा, न केवल एक क्षत्रिय गृहस्थ राजा बल्कि माता सीता के पिता, और न केवल माता सीता के पिता बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र के श्वशुर, ऐसे महाराज जनक, इनका उदाहरण अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हुए भगवान बता रहे हैं कि यदि ऐसे बड़े बड़े दिग्गज अपने नियत कर्म करते हुए समसिद्धि को प्राप्त किए हैं तो अर्जुन तुम्हें एक क्षत्रिय होने के नाते और आगे चलकर जो पांडव राजा बनेंगे उसके नाते तुम्हें अपने नियत कर्म अभी करने चाहिए। अब जब जनक महाराज का उदाहरण दिया भगवान ने तो मानो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या केवल क्षत्रिय, क्या केवल जो राजा हैं उन्हीं को लोक शिक्षा देनी है या सभी को? Arjun's question is it only the kings who have to set an example for the common masses or is it someone else also? To ye Arjun ka jo prashna, iska jawab aaj ke shlok mein Bhagwan de rahe hain. Yad yad acharati shreshthas tat tat eve taro janah सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते यद् यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते।
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते।
ये भगवद गीता और भगवद गीता में तीसरे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए आज का ये जो श्लोक जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपने अनगिनत प्रवचनों में कोट किया और कितने तात्पर्यों में प्रभुपाद ने इसको कोट किया है भागवत के, तो इसलिए इसको हम दो सिटिंग में लेंगे आज के श्लोक को। तो आज भाग एक होगा और अगले बुधवार को यही श्लोक फिर से हम लेंगे भाग दो। तो बहुत सरल है इसका अनुवाद, यद्यद आचरति श्रेष्ठस, भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ हैं उनके आचरणों पर कौन चलते हैं, इतर जन, साधारण जनता। साधारण जनता श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरणों पर चलती है। तो श्रेष्ठ जन करते क्या हैं? एक तो अपने आचरणों के द्वारा वो भगवान कह रहे हैं प्रमाण, हे कुरुते, हे कुरु नंदन, वो प्रमाण स्थापित करते हैं। दे सेट एन एग्जाम्पल। प्रमाण का एक और अर्थ है आदर्श। वो एक आदर्श स्थापित करते हैं किसके द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा। तो उनके जो आचरण हैं और उनके जो प्रमाण हैं, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनका पालन कौन करता है, लोकस्तद अनुवर्तते। वर्तन का अर्थ है पालन करना, अनुवर्तते कि उनका वो एज इट इज अनुसरण करते हैं, किनका, जो श्रेष्ठ होते हैं। तो अब यहां पर जब श्रेष्ठ शब्द इस्तेमाल किया है भगवान ने, तो भगवान यहां पर श्रेष्ठ केवल क्षत्रिय राजाओं के विषय में नहीं बोल रहे। इसलिए आज हमारी चर्चा में हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि श्रेष्ठ की परिभाषा क्या है। क्या श्रेष्ठ केवल वही हैं जो बड़े बड़े राजा हैं, या आजकल की भाषा में जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हों, क्या वही श्रेष्ठ हैं, या कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है? तो ये रहस्य आज खुलेगा। हरे कृष्ण। तो पूरा अनुवाद आज के श्लोक का इस प्रकार है, महापुरुष। अब यहां पर श्रेष्ठ का अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है, महापुरुष। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यह हुआ पूरा अनुवाद। अब आज हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, सबसे पहले श्रेष्ठों की परिभाषा क्या है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। फिर भगवान ने आचरण शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि श्रेष्ठों के साथ भगवान ये भी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ एवं आचार्य। तो श्रेष्ठों की परिभाषा क्या है, आचार्य की परिभाषा क्या है, और फिर श्रेष्ठों एवं आचार्यों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत सरल है ये तीन मुद्दे, परंतु जीवन में इसका पालन करना, उतारना, पता नहीं कितने जीवन काल लग जाएंगे, तो शुरुआत तो करें हम। तो इसलिए श्रेष्ठों की परिभाषा, जो आयु, ज्ञान, बुद्धि, साक्षात्कार एवं उत्तरदायित्व में अन्यों से श्रेष्ठ हो। बहुत टाइम लगा मुझे ये पूरा कंसाइज डेफिनेशन ढूंढने के लिए, कुछ ऑलमोस्ट एक घंटा गया। प्रभुपाद के अलग अलग भागवत सीसी, भगवत गीता के अलग अलग परपोर्ट्स में से इसका निचोड़, कि श्रेष्ठ की परिभाषा दो लाइन में यदि हम समझने की कोशिश करें तो क्या है। जो आयु, ज्ञान, बुद्धि, साक्षात्कार एवं उत्तरदायित्व में अन्यों से श्रेष्ठ हो। तो धीरे धीरे यहां पर हमको यह समझाया जा रहा है, यह समझाया जा रहा है कि शायद कहीं हम तो नहीं इस लिस्ट में, कहीं हमको तो इनडायरेक्टली श्रेष्ठ प्रभुपाद नहीं बोल रहे क्या? अवश्य अवश्य बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार से इस कैटेगरी में फिट होंगे, कुछ नहीं तो आयु आयु तो है ना हमारी। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए, तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान बताइए कि गणित के कौन से नियम ने आपको मुझसे छोटा बनाया है कि आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हो, गणित के कौन से नियम ने मुझे आपसे वरिष्ठ बनाया है कि आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आयु। भीष्म पितामह चुप हो गए, अब क्या कहें, क्योंकि सबसे वृद्ध भीष्म पितामह ही थे पूरे हस्तिनापुर में और उस समय पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि एक तो उनको मृत्यु इच्छा का वरदान मिल चुका था, तो कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि ये और कितने साल जिएंगे, कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि कब इनका मरण होगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान ने एक लाइन में आंसर दिया कि आयु, आयु ने आपको मुझसे श्रेष्ठ बनाया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि और धृतराष्ट्र, इनको लेते हुए दो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने भगवद गीता की टीका में। चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक है वयोवृद्ध और एक है ज्ञान वृद्ध। तो हालांकि धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य इत्यादि ये एक ही समायु के थे, तो वयोवृद्ध थे, परंतु इनमें से धृतराष्ट्र ज्ञान वृद्ध नहीं था, अज्ञानी, वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था और शारीरिक रूप से भी अंधा था धृतराष्ट्र। तो वहां पर चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि एक है ज्ञान वृद्ध और एक है वयोवृद्ध, दोनों वृद्ध हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं अपने अपने तरीके से। तो इसलिए श्रेष्ठों की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, जिसके अंदर ज्ञान है जो हमसे आयु में श्रेष्ठ हैं, साक्षात्कार में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, मैच्योरिटी में श्रेष्ठ हैं, और हमारे ऊपर भी कोई, हमारे ऊपर तो ये सब कोई होंगे और हमारे नीचे भी होंगे जो हमें इस आशा से देख रहे होंगे। तो यहां पर आ जाता है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। हमारे ऊपर यदि जिम्मेदारी आ गई है, चाहे छोटी सी छोटी जिम्मेदारी हो चाहे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हो, अगर हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है तो हम क्या हो गए, श्रेष्ठ हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, विच मीन्स श्रेष्ठ। अब आचार्य की परिभाषा, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने कहा है यद्यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा, तो फिर एक और भगवान उनको सिनोनिम क्या दे रहे हैं, दूसरे अर्थ में क्या कह रहे हैं कि वो आचार्य भी है। तो आचार्य की परिभाषा इस प्रकार से प्रभुपाद ने दी है, जो अपने वचनों आचरणों एवं उदाहरण से जन साधारण को सिखाए। हमने ये श्लोक पहले भी अपने गीतामृत में सुनाया है, नीति का श्लोक है जिसमें कौन है एक महात्मा कौन है एक दुरात्मा बताया गया है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्न्यत वचस्न्यत कर्मण्यत दुरात्मना, कि महात्मा कौन है, जिसके विचार, जिसके वचन और जिसके कर्म वो एक लाइन में हो, एक समान हो। अर्थात वो यही कर्म करता है जो वो बोलता है और वही बोलता है जो वो सोचता है। ये है महात्मा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। और इसका ठीक विपरीत है दुरात्मा, जो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता बिल्कुल कई बार विपरीत जो सोच रहा है और जो बोल रहा है उसका, वो है दुरात्मा। तो यहां पर आचार्य की परिभाषा प्रभुपाद ने इस प्रकार से दी है, जो अपने वचनों आचरणों एवं उदाहरण से जन साधारण को सिखाए। तो अब आज के श्लोक में भगवान ने शुरुआत की है, आज के श्लोक की, श्रेष्ठों द्वारा आचरण। तो अब हम ये दो शब्द ले ले, श्रेष्ठ और आचार्य, जिनकी परिभाषा हमने सुनी। तो श्रेष्ठ हो सकता है कि एक पद हो, जैसे यदि किसी की आयु हो गई है तो उसको एक पद मिल गया, सीनियर सिटीजन हो गया, है ना, तो पद मिल गया उसको, तो केवल उस पद के कारण वो श्रेष्ठ हो गया होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पद के कारण नहीं, केवल अपने आचरणों के कारण। इसलिए भगवान ने कहा है आज के श्लोक में कि केवल श्रेष्ठ नहीं बनना, बल्कि श्रेष्ठ के साथ आचार्य भी बनना है। ये क्यों भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों का विभाजन समझना। क्योंकि हमें पद तो बहुत मिलेंगे, पद आप लोग समझते हैं ना, पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, वो तो बहुत मिलेंगे और बहुत बैठे हुए हैं बड़े बड़े पोस्ट पर आजकल लोग। परंतु समस्या कहां होती है कि श्रेष्ठ की परिभाषा तो शायद वो पूरी कर रहे हो किसी न किसी तरीके से, मतलब जो श्रेष्ठ की हमने परिभाषा ली उसमें से कोई एक अंग लेकर वो श्रेष्ठ बन गए होंगे, पद लेकर, अपनी बुद्धि के कारण, आयु के कारण, जिसके भी कारण। परंतु आचरण उनके क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कैसे आचरण, जो कि शास्त्र पर आधारित हो, जो कि लोगों को शिक्षा देने वाले आचरण हो, लोक संग्रह, पिछले श्लोक से इसका ये कनेक्शन है। तो इसलिए ये दोनों समझना बहुत आवश्यक है कि श्रेष्ठों द्वारा आचरण। अब हमारे श्रीमद् भागवत में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कहां पर ऐसे श्रेष्ठों के विषय में कहा गया है। तो ये एक श्लोक में श्रेष्ठों के विषय में श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये भी। गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यान्, न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेत यः समुपेत मृत्युम्। वन हु कैनॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंस फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ शुड नेवर बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, अ फादर, अ हस्बैंड, अ मदर और अ वर्शिपेबल डेमीगॉड। अब यहां पर वर्शिपेबल डेमीगॉड, एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी, उनका मैं प्रवचन सुन रहा था कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा कि ये जो डेमीगॉड है, देवता, शास्त्रों में ये जो देवता पूजा के विषय में कहा गया है, तो कई बार हमको लगता है कि भाई कोई नास्तिक होगा या कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा होगा या वैदिक संस्कृति का पालन नहीं कर रहा होगा तो वो डेमीगॉड वर्शिपर थोड़ी होगा। उन्होंने कहा कि देवताओं की पूजा साधारणतः लोग क्यों करते हैं, क्योंकि देवताओं में वो कुछ देखते हैं कि ठीक है वो देवता बहुत सुंदर है, वो देवता बहुत निरोगी है, वो देवता बहुत विख्यात है, वो देवता वरदानों में वरदान देने वाला सरताज है। तो क्या देख रहे हैं उनके अंदर, उनके अंदर वो कुछ ऐश्वर्य देख रहे हैं। तो बता रहे थे कि आजकल के देवता कौन हो गए अगर इन ऐश्वर्यों को लो, ये सिनेमा स्टार, क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, उद्योगपति, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, तो वो कह रहे थे कि डेबिंग गॉड वर्शिप हैज नॉट स्टॉप्ड. इवन इफ समवन हु इज एन एथीस्ट माइट स्टिल बी डूइंग हिज ओन वर्जन ऑफ डेबिंग गॉड वर्शिप. तो यहां पर मैं ये इसलिए पॉइंट बोल रहा हूं कि जो वर्शिपेबल डेमीगॉड, बाकी तो हम समझ गए कि गुरु किसको होना है, पिता किसको होना है, माता किसको होना है, पति किसको होना है. और यहां पर वर्शिपेबल डेमीगॉड का अर्थ है कि यदि हमारे अंदर देवताओं के भी कुछ अंश हैं, यदि ऐश्वर्य, तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई, अर्थात श्रेष्ठ हो गए. तो ये लिस्ट, एक ब्रॉड कैटेगरी दी गई है. किसकी ब्रॉड कैटेगरी दी गई है? श्रेष्ठों की ब्रॉड कैटेगरी दी गई है. तो मैं सोच रहा था कि अब ये जो लिस्ट दी गई है इस श्लोक में, जिसके अंदर बहुत स्ट्रांगली बोला गया है, बहुत स्ट्रांगली इसके अंदर कहा गया है कि यदि किसी को ये पोस्ट पर जाना है, यदि किसी ने पोस्ट ले रखी है या लेनी है, कौन सी पोस्ट, गुरु, पति, पिता, माता या फिर जो देवताओं के ऐश्वर्य है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो रूप हो, चाहे शक्ति हो, बल हो, जो कुछ हो, यदि ये सब के पोस्ट पर कोई जाना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि इस श्लोक का, आज के श्लोक से कनेक्शन क्या है, कि वो अपने आचरणों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने उदाहरण के द्वारा, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, गुरु के कौन डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनके डिसाइपल्स, माता पिता के डिपेंडेंट कौन हो जाएंगे, उनके बच्चे, और बाकी जो श्रेष्ठ हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, देवता स्वरूप जिनको पूजा जाता है, मंदिर भी बन गए तो उनके, तो जो ये देवता स्वरूप पूजे जाते हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके डिसाइपल हो गए ना, तो ये सारे कौन हो गए, इन सब के डिपेंडेंट हो गए. तो इनकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? इनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जो मुझ पर निर्भर हैं, जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, उनको क्या मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल रहा हूं या नहीं. तो इस श्लोक में कह दिया है कि यदि नहीं तो आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है ये सब पद लेने का, ये श्रेष्ठ बनने का कोई हक नहीं. तो काफी स्ट्रांग है ये. तो फिर मैं सोच रहा था कि अब इसमें से हमारे लिए, जो हमारा गीतामृत का क्राउड है, गीतामृत का क्राउड और जन साधारण बाहर भी, पूरे भारतवर्ष में जो मैक्सिमम क्राउड यदि हम देखें, तो वो कौन सी कैटेगरी में, इस लिस्ट में से कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बड़े बड़े गुरु तो बहुत कम होंगे, है कोई गीतामृत में कोई बहुत बड़ा गुरु है? गुरु यहां पे स्पिरिचुअल मास्टर बोला गया है. आजकल गुरु शब्द कहीं पर भी लगा देते हैं, योगा गुरु, क्रिकेट गुरु. तो साधारणतः यहां पर हम कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं? ज्यादातर यहां पर कौन बैठे हुए हैं? गृहस्थ, है ना. ये बहुत कम इक्का दुक्का यहां पे दिख रहे हैं, कोई थोड़े. तो साधारणतः कौन है? गृहस्थ. तो कोई है जो ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम में है, कई हैं जो जाने वाले हैं, कई बीच में होंगे. तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे लिए आज का श्लोक और ये श्लोक कौन सा जो रेलेवेंट पद है श्रेष्ठ का, और उसमें कैसे आचार्य बने. तो मैंने सोचा कि आज के लिए टॉपिक सूटेबल रहेगा पेरेंटिंग. क्यों पेरेंटिंग सूटेबल रहेगा? क्योंकि माता पिता पति पत्नी तो है वो ऑलरेडी आ गए दो, तो पति पत्नी है साइमल्टेनियसली माता पिता भी है, तो माता पिता है पति पत्नी है और वो जो श्रेष्ठ पद पर आए हैं तो उनके जो अनुयायी कौन है, उनके डायरेक्ट बच्चे, और वो आगे चलकर क्या यही पद लेने वाले हैं, आगे चलकर वो कौन सा पद लेने वाले हैं, वो भी किसी के माता पिता बनेंगे, वो भी किसी के पति किसी के पत्नी बनेंगे। तो ये जो श्रृंखला है कितनी सदियों से चलती आ रही है, तो इसमें ये जो श्रेष्ठ बहुत कॉमन और भारत में तो बहुत कॉमन है, तो ये क्योंकि विदेश में कोई समझ में नहीं आता है। मुझे हाल ही में किसी ने ईमेल बोला भेजा है कि द मोस्ट कंफ्यूजिंग डे इन अमेरिका इज फादर्स डे। व्हाई? बिकॉज द सन डजंट नो हुम टू विश। तो कम से कम ये जो दाम्पत्य जीवन की संस्कृति है भारत में थोड़ा तो मेंटेन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भगवान जब श्रेष्ठ की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान एक ही श्लोक में अर्जुन को लीडरशिप सेमिनार दिए, एक श्लोक में लीडरशिप सेमिनार। देखिए कितना भगवान का एलोक्वेंस, एलोक्वेंस क्या होता है, मैक्सिमम मैसेज इन मिनिमम वर्ड्स, उसको बोलते हैं एलोक्वेंस। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी डेफिनेशन देते हैं। तो भगवान ने जो अभी श्रीमद् भागवत का हमने श्लोक लिया, तो इसलिए जब भगवान लीडर की बात कर रहे हैं, सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट लीडर्स फॉर द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विल लर्न लीडरशिप क्वालिटीज डायरेक्टली फर्स्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो बच्चों के लिए श्रेष्ठ लीडर कौन हो गए, माता पिता उनके, वो हो गए उनके आचार्य। तो इसलिए आज हमारा थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है ये इसके ऊपर बोलना, हमने पहले भी कुछ साल पहले ये टॉपिक लिया था आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, और नासिक के कुछ बहुत से कपल्स आए थे वो सेमिनार में, तो मैंने देखा कि खाली साउंड सिस्टम में जो बैठे हुए थे वही एक बैचलर थे मेरे जैसे, बाकी सब कपल्स बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, बहुत से नए कपल्स थे, तो मैंने कहा आई फील एज इफ नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य एंड आई एम गिविंग अ सेमिनार ऑन पेरेंटिंग। तो मुझे वो पेरेंटिंग सेमिनार के पहले बाहर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, हमारे भक्ति थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक किड्स, यू आर गिविंग सेमिनार ऑन पेरेंटिंग, डू यू लाइक चिल्ड्रन। मैंने कहा डेफिनेटली आई लव इफ दे आर नॉट माइन। तो वो जो सेमिनार, उसमें से कुछ एक्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें से हैं। तो वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कहा अ टाइगर इज गिविंग अ सेमिनार ऑन वेजिटेरियनिज्म। और एन एलिफेंट इज गिविंग अ सेमिनार ऑन हाउ टू लूज वेट। तो जैसे यहां पर एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक एंड स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड इवन इफ दे आर चाइनीज चिल्ड्रन, दे आर यूनिक एंड दे आर स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड। और इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चों के अंदर भगवान की छवि दिखती है, क्यों, क्योंकि निर्मल उनका मन निर्मल दिखता है, बच्चे मन के सच्चे, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं लेकिन बच्चे मन के सच्चे, बड़े होने के बाद खा जाए कच्चे। तो अब प्रश्न है, ये जो श्रेष्ठ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हेन डज पेरेंटिंग बिगिन, ये क्वेश्चन है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं इवन बिफोर पेरेंट्स डिसाइड टू कंसीव अ चाइल्ड, विच मीन्स ड्यूरिंग कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहां से उससे भी पहले, जैसे यहां पर कहा गया, क्योंकि हमारे वैदिक जो संस्कार बताए गए हैं वो ऐसे संस्कार हैं कि उसकी शुरुआत जन्म से होती है, और वो सारे संस्कार जन्म से शुरुआत हुई अंत्येष्टि तक, और उसके दौरान बीच में जब स्त्री पुरुष किसी शिशु को जन्म देते हैं तो उसके भी जन्म के संस्कार जो हैं वो माता पिता के ऊपर उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो संस्कारों की श्रृंखला है वो माता पिता स्वयं अपने जीवन में, और फिर वो कैसे उसको धरोहर के रूप में अपने बच्चों को वो संस्कार दें। अब होता क्या है कि जहां पर हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि श्रेष्ठों का आचरण क्या होना चाहिए, पेरेंट लीडर्स का आचरण क्या होना चाहिए, तो आजकल तो कलयुग में स्थिति बहुत विपरीत हो गई, टॉपसी टर्वी जिसको कहेंगे। जैसे वेस्ट में, ये स्लाइड में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वेस्ट में स्थिति ऐसी आ गई है, पता नहीं आपने ये लाइन सुनी है क्या, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉर्न ऑन अ सैटरडे नाइट ओवर अ बॉटल ऑफ विस्की, कि माता पिता कोई उनको संस्कार नहीं, नशे में धुत, इंद्रिय भोग में धुत, और वहां से उत्पत्ति हुई संतान की। जैसे एक क्लासरूम में एक बच्चे को पूछा गया, साइंस की क्लास चल रही थी, तो साइंस टीचर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो बच्चा कहता है, माय फादर डिस्कवर्ड माय मदर एंड दे बोथ इन्वेंटेड मी। तो केवल शारीरिक रूप से संतान की उत्पत्ति कर देना केवल यही जिम्मेदारी नहीं है। एक बार एक क्लासरूम में एक बच्चे को पूछा कि अब ये सेमेस्टर शुरू ही हुआ था, तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा एक्स्ट्रा सिंह। बोले ये क्या नाम होता है एक्स्ट्रा सिंह, बोला क्योंकि मैं 12वां पैदा हुआ हूं तो एक्स्ट्रास, पहले क्रिकेट टीम हो गई 11वां इसलिए मेरा नाम है एक्स्ट्रा सिंह। बोले तुम्हारे 12 भाई बहन है, 12 भाई बहन। तो टीचर पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, यही करते हैं। तो पेरेंटिंग का अर्थ ये नहीं कि केवल शारीरिक रूप से धरती का बोझ बढ़ाते रहें, वहां पर संस्कार बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंसेप्शन, चाइल्ड इज ट्रेन्ड कंटिन्यूअली राइट फ्रॉम द कंसेप्शन स्टेज अंटिल ही डेवलप्स हिज ओन कंसेप्शन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज नॉट सिंपली टू टीच देयर चिल्ड्रेन देयर मदर टंग, कि हां मातृभाषा बहुत अच्छी से बोल रहा है। मैंने पिताजी को पूछा था कि इसको मदर टंग क्यों बोलते हैं, आप भी तो वही भाषा बोल रहे हो। मेरे पिताजी ने बोला बिकॉज फादर हार्डली गेट्स टू स्पीक, देयरफॉर इट्स कॉल्ड मदर। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन द पेरेंट्स इज नॉट जस्ट सिंपली टीचिंग देयर चिल्ड्रन देयर फैमिली मदर टंग एंड यू नो हाउ टू ईट एंड हाउ टू टेक बाथ, डेफिनेटली दीज ऑल थिंग्स are required on a bodily level, but more than that, over here as is mentioned, conception, and that conception of the child, which means uske jo adarsh hain, uske jo drishtikon hain, uske jo values hain, jo apne jeevan mein wo morals aur ethics follow karega, wo kahan se shuruaat hogi? Conception se. Ye uske conceptions kahan se usko milenge? Mata pita kis attitude mein usko conceive kar rahe hain, wo important hai. To ab kya ho kya raha hai aajkal ki पाश्चात्य देश की संस्कृति को हम जब थोड़ा बहुत पालन करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत पालन नहीं कर सकते. ये नहीं कि केवल वहां की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर लें और बाकी संस्कृति हम नहीं करेंगे. नहीं, वहां की संस्कृति भी उसके साथ साथ आती है. और वहां की संस्कृति क्या है? वहां की संस्कृति यही है कि जहां तक परिवार और संस्कार और परिवार के अंदर जो संस्कार हैं उसका सवाल आता है. तो महात्मा गांधी को जब पूछा गया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न कल्चर या पाश्चात्य संस्कार, तो महात्मा गांधी ने उत्तर क्या दिया था? वेस्टर्न कल्चर, इट्स अ नाइस आइडिया, व्हेन विल इट बिगिन? कि बहुत अच्छा प्रस्ताव है, शुरू कब होगा ये? मतलब वेस्टर्न एंड कल्चर, it sounds to be ironical, opposite to each other. तो अभी यहां पर एक व्यक्ति ने कहा, before marriage I had 6 philosophies how to raise a child and now I have 6 children, no philosophy. क्यों? क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं कि किस प्रकार से ये संस्कार देने चाहिए, किस प्रकार से मेरे अंदर संस्कार आने चाहिए, मैं कैसे श्रेष्ठ बनूं, मेरे क्या आचरण होने चाहिए और फिर कैसे वो बच्चों में जाए. तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम जब बच्चों की परवरिश में लगते हैं तो जो ये क्वेश्चन है, चॉइस बिटवीन करेक्टिंग एंड लविंग, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये बच्चे की फोटो यहां पर दिखा रहा हूं आपको. इसके पीछे एक तात्पर्य है, ये फोटो दिखाने के पीछे पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं, क्या क्या तात्पर्य हो सकता है? अब साधारणतः बच्चे ने किया क्या है? मस्ती, थोड़ी मस्ती की है. ये हाथों पे लगाने वाला रंग नहीं है, हाथों पे लगा लिया. तो होता क्या है, कई बार माता पिता के सामने ये चैलेंज, चुनौती आती है कि इतने छोटे बच्चे ने जब कुछ इस प्रकार की मस्ती की या उपद्रव किया तो उसको डांटते समय वो जब उसका चेहरा देखते हैं, ऐसा मासूम चेहरा, तो वो थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं. शुड आई करेक्ट और शुड आई लव? तो इसलिए मैंने ये फोटो लिया कि जिसके अंदर साधारणतः ये चुनौती आती है माता पिता के सामने, दैट इफ आई कीप लविंग देन आई विल मिस आउट ऑन करेक्टिंग माई चाइल्ड, एंड इफ आई कीप करेक्टिंग माई चाइल्ड देन आई विल मिस आउट ऑन लविंग माई चाइल्ड. इंग्लिश में एक है ना वो सेइंग, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड. समझ में आ रहा आपको कि छड़ी को दूर रखो और बच्चे को बिगाड़ो. तो छड़ी इस्तेमाल नहीं करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? और छड़ी इस्तेमाल करोगे बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन फिर वो हर समय ऐसे डर के मारे थरथर कांपता हो आपके सामने. तो इसलिए ये जो, इसको इंग्लिश में कहते डाइकोटोमी, दैट हाउ मच शुड आई लव माई चाइल्ड एंड हाउ मच शुड आई करेक्ट माई चाइल्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पता नहीं आता है क्या आप लोग? बीच बीच में आप लोग इनपुट्स देते रहे ना, आप लोग सब फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, हाँ, और रियलाइज्ड हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग सब चल रहा है आपका. तो सो चॉइस बिटवीन करेक्टिंग एंड लविंग चिल्ड्रन, तो होता ये जो देख रहे हैं आप, कि हाथों की ओर देखेंगे तो लगता है कि सुधारो इस बच्चे को, चेहरे की ओर देखेंगे तो प्यार आता है ना। तो यही असमंजस में माता पिता कई बार रहते हैं। अब थ्री वेज टू बिकम पेरेंट लीडर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा है नेग्लिजेंट। कि कई माता पिता होते हैं कि वो अपने उदाहरण से पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बच्चों के सामने, कई होते हैं एकदम नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं, और कई होते हैं उनको परवाह ही नहीं बस। कि कई बार उनको ध्यान में नहीं रहता है कि सबसे आखिरी बच्चे का नाम क्या है, टोटली इंडिफरेंट, इसलिए उसको कुछ भी नाम से बुलाते हैं। अरे छोटे, तो सबसे छोटा दिख रहा है छोटे बाद में। सो टोटली नेग्लिजेंट मतलब इंडिफरेंट, कुछ परवाह ही नहीं है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो लीडर, अगर एक पेरेंट को लीडर कहा गया है जो हमने श्रीमद् भागवत का श्लोक लिया, तो उसके अंदर उसको समझना है कि मेरा ये तीन कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी में मैं जा रहा हूं। एम आई बींग अ पॉजिटिव आचार्य और श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ और आचार्य नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, नेगेटिवली भी प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में बताया है श्रीमद् भागवत के, जैसे कि हिरण्यकश्यपु, रावण इत्यादि, रावण की आज तक पूजा भी होती है। लंका में ऐसी जगह है जहां पर रावण की पूजा होती है, कि वो रावण को पूजनीय मानते हैं और रावण के पद चिन्हों पर चलते रहते हैं। तो रावण के लिए श्लोक बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, कि हमारे लिए श्रेष्ठ आचरण करने वाला रावण। तो जो नेगेटिव है उसमें भी कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है और अपनी फॉलोइंग खड़ा कर सकता है। और फिर नेग्लिजेंट, तो नेग्लिजेंट में फिर जो डिपेंडेंट है वो कोई भी कैटेगरी में जा सकते हैं। कई बार वो पॉजिटिव कैटेगरी में चले जाते हैं, कई बार मोस्टली नेगेटिव में चले जाते हैं। क्योंकि कलयुग का लक्षण क्या है कि जो अधर्म है वो किस प्रकार से है, वो जल के समान है। जैसे कि पानी जो है वो हर समय सबसे निम्नतर स्थल ढूंढता है पहुंचने के लिए। जैसे हमारा ये फाउंटेन जब चालू होता है तो पानी कहां कौन सा स्थल ढूंढ रहा है, जो सबसे लोएस्ट। तो वैसे ही कलयुग में जो बुद्धि है, मन है, वो स्वाभाविक रूप से हर समय लोएस्ट स्टैंडर्ड्स, लोएस्ट एक्टिविटी, सब उसको ढूंढता है। तो इसलिए ये जो नेग्लिजेंस है, ये मत समझना कि नेग्लिजेंस मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं तो उसको बुरा तो नहीं सिखा रहा हूं, अच्छा भी नहीं सिखा रहा हूं लेकिन बुरा तो नहीं सिखा रहा हूं। नहीं, अगर आप निग्लेक्ट भी कर रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होगी। तो होता क्या है आजकल, ये बहुत विशेष रिमोट मैंने ढूंढ निकाला। ये रिमोट कंट्रोल क्या है कि ये जो रिमोट कंट्रोल मेंटेलिटी है आजकल, क्यों रिमोट कंट्रोल मेंटेलिटी हो गई है आजकल लोगों की, क्योंकि एवरीथिंग है फिंगर टिप्स, बोलते हैं ना कि मुझे चैनल चेंज करना है, बस एक बटन दबाना है, मेरे को उठने की जरूरत नहीं, बस लेटे लेटे बटन दबाना है। किसी को मुझे फोन करना है, बात करनी है, बस बटन दबाना है। और जो कुछ आजकल सब कुछ बटन पर चल रहा है, मुझे कुछ पीसना है बटन दबाओ, मुझे कुछ बाहर निकालना है बटन दबाओ, अंदर डालना है बटन दबाओ, सब कुछ। ऊपर जाना है लिफ्ट में बटन दबाओ, बस ऊपर जाऊंगा नीचे आऊंगा, सब कुछ बटन में हो रहा है। तो फिर होता क्या है कि जब हम डील करते हैं परिवार में भी आपस में, तो हम लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे आचरणों पर कैसे चले, बटन ढूंढते कौन सा बटन है यहाँ पे। देखिए बच्चों के लिए ये सब अलग अलग, डोंट आंसर बैक। अच्छा मैं आपको थोड़ा इसका क्लोजअप दिखाता हूं, ये क्लोजअप है इसका। तो ये बटन दबाते, डू होमवर्क, ईट ग्रीन्स, से प्लीज, ग्रो अप, से थैंक यू, डू डिशेस, डोंट आंसर बैक, ये सारी चीजें। तो बटन दबा दबा के कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमारे टीवी का चैनल चेंज होता है वैसे मेरे बच्चों का भी चैनल चेंज होना चाहिए। ये मस्ती कर रहा है, बटन दबाओ, चुप हो जाओ। फिर होता क्या, बटन दबा रहे लेकिन कुछ चैनल चेंज ही नहीं हो रहा है। चैनल चेंज भी हुआ तो ऐसा चैनल चेंज हुआ कि हम सोच रहे थे कि आस्था चैनल आएगा बच्चे का, वो तो फिर एमटीवी में चला गया। तो ये जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं आजकल की लाइफस्टाइल के वजह से कि हम क्विक रिजल्ट चाहते हैं, ये रिमोट कंट्रोल मेंटालिटी क्या है कि बिना जिम्मेदारी निभाए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, मतलब मैं चाहे निकम्मा हूं लेकिन मेरा बच्चा महात्मा गांधी निकलना चाहिए। तो भाई आम के पेड़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से संतरा उगेगा, नहीं, आम के पेड़ से आम ही उगने वाला है। और कई बार ऐसे आम उगेंगे जो पकेंगे नहीं, खट्टे कैरी रहेंगे खाली। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन ब्लॉक्स बाय पेरेंट्स, जब बच्चों के साथ व्यवहार होता है, इंटरोगेटिंग, कमांडिंग, एडवाइजिंग, मॉरलाइजिंग, सार्कैज़म, कि जो कम्युनिकेशन होता है माता पिता और बच्चों के बीच में, ये कैटेगरीज में चला जाता है। कि बच्चा अगर कुछ, हमको लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस कर रहा है, तो हम लोग कौन से मोड में चले जाते हैं, हम डिटेक्टिव बन जाते हैं। इंटर कहाँ गया था, इतना टाइम कैसे लगा, किसके साथ था, ये सब क्या है, पॉकेट दिखा, सेलफोन दिखा, क्या क्या। तो इसको बोलते हैं डिटेक्टिव मोड, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन। तो बच्चे को क्या लगता है, मैं कोई बहुत बड़ा कातिल हूं, बहुत बड़ा अपराधी हूं, कि मैं जब भी घर पे आता हूं तो मेरा ऐसा इंट्रोगेशन होता है कि जैसे मैं बाहर 10 खून करके आया हूं। तो ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ब्लॉक्स, ये ब्लॉक करता है जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए। और फिर कमांडिंग, कि मैं जो बोलता हूं वो कर, यहां पर बैठ, यहां पर मेरे सामने बैठ और आवाज नहीं निकालने का। तो फिर वो हिटलर के मोड में, डिटेक्टिव से हिटलर के मोड में। नहीं तो फिर हम लोग सलाह देना शुरू करते हैं, और सलाह ऐसी देते हैं कि बच्चा ऊपर से नीचे पहले हमको देखता है, पिताजी आप ये कौन सी भगवत गीता से सुना रहे हैं, मैंने तो कभी आपको भगवत गीता खोलते हुए देखा नहीं और पढ़ते हुए देखा नहीं, अपने जीवन में उतारते हुए देखा नहीं। तो कई मोड़ क्या होते हैं, केवल एडवाइजिंग, एडवाइज, सलाह देते हैं, बेटे ऐसा करना चाहिए, बेटे वैसा करना है, बेटे ये। तो जैसे एक बाप ने बेटे को बोलता है कि रामचंद्र का उदाहरण, रामायण में रामचंद्र का उदाहरण देख, कैसे अपने पिता की बात मानी उन्होंने, 14 साल वनवास चले गए, तो रामचंद्र जी का उदाहरण सीखना चाहिए तुमको। तो बेटा भी बोलता है, तुम दशरथ हो क्या? जैसे एक मैनेजमेंट बुक में मैं पढ़ रहा था, एक पिता अपने बेटे को बोलते हैं, He's saying, have you seen the example of Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, when he was of your age, 20 years, he was the breadwinner of the family. He was an earning member of the family. And look at you. So the son said, and when he was of your age, he was the president of America. Wo chup ho gaya bichara, kya bole? एडवाइजिंग सही बात है, लेकिन वो जो एडवाइस हम दे रहे हैं, ये ध्यान में रखना कि आजकल के बच्चे वो बहुत शार्प हैं। वो जो भी एडवाइस आप दोगे, वो सबसे पहले आपको सामने खड़ा करेंगे, आपको कड़गरे में खड़ा करेंगे, और सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपके आचरण है कि नहीं, आप जो हमको बता रहे हो पहले आप करके दिखाओ। डोंट जस्ट टेल मी, शो मी, बहुत महत्वपूर्ण है। और वही सेम मॉरलाइजिंग, तो मॉरल प्रिंसिपल्स, जैसे मैं बता रहा था कि बॉम्बे में जो सबसे पहले प्रीचिंग असाइनमेंट मुझे दिया गया वो था वैल्यू एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, ये प्रीचिंग का सबसे पहला असाइनमेंट था मुझे। तो मैं जब गया स्कूल में, वैल्यू एजुकेशन सिखाने के लिए, तो मैंने पूछा प्रिंसिपल से कि आपके जो टीचर्स हैं वो क्यों नहीं सिखा रहे, क्योंकि वो लोग हमको अप्रोच किए थे, राधा गोपीनाथ मंदिर में ही आए थे और हमको अप्रोच किए थे कि आपके कोई प्रीचर्स आ सकते हैं क्या वैल्यू एजुकेशन सिखाने के लिए। तो मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा प्रिंसिपल से, हमारे मंदिर के पास ही एक BKS हाई स्कूल करके, तो उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आवर टीचर्स दे कैन टीच मैथमेटिक्स, दे कैन टीच हिस्ट्री, दे कैन टीच यू नो साइंस एंड वट एवर, बट दे कैन नॉट टीच वैल्यूज बिकॉज दे कांट लुक स्क्वेयर इन टू द आईज ऑफ द चिल्ड्रन एंड टेल देम वॉट नॉट टू डू एंड वॉट टू डू when they are not following in their lives. And the children know. Children know. कि आजकल वो स्कूल के अंदर ही values तोड़ रहे हैं, तो बच्चे जानते हैं कि ये स्कूल के अंदर values तोड़ रहे हैं, तो ये मेरे को क्या value education सिखाएंगे। और फिर sarcasm, कई बार sarcasm ऐसा होता है, जैसे एक बार एक बेचारा उत्तर भारत यूपी बिहार से कोई बॉम्बे आया मॉडल बनने के लिए, तो कुछ हुआ नहीं, बॉलीवुड वगैरह यहां कुछ मिला नहीं, ब्रेक नहीं मिला, तो हताश होकर जब वापस गया तो पिताजी उसके ऊपर अब व्यंग मारना शुरू किए। पिताजी टीवी देख रहे, टीवी में डिस्कवरी चैनल चल रहा, तो बोलते देख कुत्ते बिल्ली भी आ गए टीवी पे, कुत्ते बिल्ली तेर से भले, तो ऐसे आ गया मुंह लटका के। तो इसको बोलते हैं सरकैज़म। इस भाषा में जब बच्चों के साथ बात की जाती है तो फिर बच्चे क्या सीखते, यही सीखते हैं वो भी, तो वो भी फिर इसी भाषा में उत्तर देते हैं। जैसे मैं ये उदाहरण पहले भी एक बार दे रहा था कि मेरा एक बैचमेट एयरफोर्स का, वो बता रहा था कि बहुत समय बाद उसको एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया, मेडिकल क्लियर हुआ, उसके पहले उसके पिताजी हर बार उसको घर पे आते तो टॉन्ट मारते, इतना बड़ा खंबे जैसा बड़ा हो गया है, घर पे पड़ा रहता है निठल्ला, पता नहीं कौन से मनुष्य घड़ी में पैदा किया था। तो अब इसने आंसर क्या दिया, इसने आंसर दिया कि पैदा तो आपने किया था, मैंने थोड़ी टाइम दिया था, मैंने थोड़ी एप्लीकेशन डाला था कि मुझे पैदा करो। तो होता क्या है कि ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं कि जब इस प्रकार की भाषा बोली जाती है तो फिर रिटर्न में उनको रिटर्न गिफ्ट ये मिलता है। अब बच्चों के जो चाइल्डहुड एडिक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स, टेलीविजन, आजकल मतलब ये ब्रॉड कैटेगरीज है जो कि सभी पेरेंट्स फेस करते हैं, जो इतने क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रीचर्स के पास कि कैसे हम बच्चों की ये एडिक्शंस, और ये एडिक्शंस ऐसे हैं आप लोग को अंदाजा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आज दिखाने वाला हूं, काफी स्ट्रांग मैसेज है इस वीडियो का, तो यदि मैसेज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगे तो क्षमा करना, लेकिन क्योंकि डिजीज इतना स्ट्रांग है तो इसलिए इसका जो मेडिसिन है, इसका जो मैसेज है वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, उतना ही और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना आवश्यक है। तो क्या इनके इल इफेक्ट्स होते हैं, तो एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो है, उसको ध्यान से आप देखिएगा, उसका जो उसको क्या कह सकते हैं, उसका जो सस्पेंस है वो लास्ट में, सस्पेंस लास्ट में ही होता है ना, और बहुत स्ट्रांग मैसेज इस वीडियो के द्वारा है। बेसिकली इस वीडियो का थीम है, मैं पहले बता दूं, आजकल टीनेजर्स में जो ऑनलाइन चैटिंग, इंटरनेट के द्वारा जो ऑनलाइन चैटिंग होता है, तो ऑनलाइन चैटिंग के कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या हो सकते, तो ये इसका मैसेज है। कैन वी हैव द लाइट्स ऑफ, हरे कृष्णा। आई होप द मैसेज वॉज कन्वेड क्वाइट स्ट्रांगली दैट दिस इज नॉट जस्ट फिक्शन, दिस इज नॉट जस्ट मेड अप, बट दीज आर इंस्टेंसेस, वेरी सॉरी इंसिडेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस। एंड ओवर हियर इफ यू ऑब्जर्व्ड, it was because of negligence of the parents. wo kya gul khila raha hai sar pe haath pher ke chali gayi maa, to aapne dekha behan ek kamre mein, bhai ek kamre mein, aur dono ek dusre se online chatting chal raha hai, pata nahi ki dono ke vichar kya chal rahe hain। to agar is prakar ke sanskar उनको मिल रहे हैं और इस प्रकार के संस्कार वो कहां पर ढूंढ रहे हैं, जहां पर उनको ढूंढने चाहिए असली संस्कार अपने माता पिता में, वो तो उनको नहीं मिल रहे। और उसके बदले, यही तो मैंने बोला कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि केवल अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाकर उनको उनके डेस्क पर लाके देना, और ये नहीं देखना कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनका संग क्या है, उनकी चेतनाएं क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं। और जब तक माता पिता अपने उदाहरण से ये नहीं देंगे, तो वो तो ये सब ऐसे जगहों पर ढूंढेंगे, और फिर कई बार नतीजा इतना शर्मनाक हो सकता है, इट कुड बी सच अ शेमलेस दैट यू नो सच अ शेमलेस एक्ट that a person cannot even show his or her own face to एनीवन फॉर दैट मैटर. तो इसलिए यहां पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो ये चाइल्डहुड एडिक्शंस हैं, कई बार हम लोग प्रोवाइड कर कर देते हैं और प्रोवाइड कर कर देते हैं कि मेरा बच्चा प्रगति कर रहा है, मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, कि केवल वो 5 साल का है और उसको मालूम है कि कैसे डाउनलोड करना है गाना इंटरनेट से. और लोग माता पिता वो छाती सीना तान कर बोलते हैं कि मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, केवल 4 साल का 5 साल का और उसको मालूम है कि कैसे सब करना है. हाँ, तो अभी 4-5 साल में ये सीख रहा है, बड़ा होने के बाद ये जो आपने देखा ऐसे गुल खिलाएगा. और प्रहलाद महाराज ने क्या कहा वो तो ना तो माता पिता को पता है तो बच्चों को क्या पता होगा. जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि 5 साल की उम्र में गाना डाउनलोड नहीं करना है, 5 साल की उम्र में वीडियो गेम खेलना, ये वो सीख गया, ये उसकी प्रगति नहीं है. 5 साल की उम्र में धर्मान भागवतान यहा, कि वो श्रीमद् भागवत का धर्म कितना पालन कर रहा है अपने जीवन में. इसलिए प्रहलाद महाराज ने जो सत्युग में बात बोली, हमको लगता है कि ये तो पिछड़ा हुआ हिसाब है, ये पिछड़े हुए ख्यालात के लोग हैं कि 5 साल से उसको भक्ति की बातें बताओ उसको. अब देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए तो मैंने इसकी चर्चा की थी कि ये रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों में से सबसे पहले आया था. उसके साथ मैकॉले और इत्यादि आए थे, तो उनको खाली भारत का मुआयना करने के लिए भेजा था. किसने? अंग्रेज सरकार ने. तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा और मैकॉले ने भी कहा कि इनकी जो शिक्षा प्रणाली है, किसकी? भारतीयों की. वो पूरी शिक्षा प्रणाली इनके संस्कारों पर आधारित है. Their entire education is based on their culture. So if you want to rule over them, you have to break their culture. If you want to break their culture, you have to destroy their educational system. और फिर इन्होंने अपने शास्त्र पढ़े और शास्त्र इसलिए पढ़े ताकि हमारे शिक्षा प्रणाली से हमारे संस्कार, हमारे शास्त्रों को ये निकाल सके. तब जाकर ये 200 साल तक हमारे ऊपर शासन कर सके, अभी भी कर रहे हैं. अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब ये आए तो इन्होंने गणित, मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स का मैं एक उदाहरण आपको दूं कि मैथमेटिक्स के सम्स कैसे एक विद्यार्थी के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं टेक्स्ट बुक्स में. हम लोग सब पढ़े और हो सकता है बच्चों को पढ़ा भी रहे होंगे. तो मैथमेटिक्स का कोई एक सम 10-5 सिखाना है. अर्थमेटिक में सिखाना क्या है? 10-5. तो अंग्रेजों ने इसी मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक के सम को कैसे प्रेजेंट किया, रॉबर्ट क्लाइव और मैकॉले, ये सब इनकी चाल थी. तो इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया? इफ यू हैव 10 चॉकलेट्स एंड इफ यू गिव 5 चॉकलेट्स टू योर सिस्टर, हाउ मेनी विल रिमेन? अब सिखाना क्या है? 10-5 सिखाना है. तो चॉकलेट को क्यों बीच में लाए? तो बच्चे के अंदर संस्कार क्या आ रहे हैं? बच्चे के अंदर ये संस्कार आ रहे हैं कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, तो माता पिता से जाके पूछता है चॉकलेट कहां है. उसको 10 से मतलब नहीं है, उसको चॉकलेट से मतलब है. तो ये जो अंग्रेज, इन्होंने ये एग्जाम्पल जो दिया, इस एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने किया क्या कि जब ये बच्चा अब अपने घर की मिठाई छोड़कर चॉकलेट मांगेगा तो माता पिता अब चॉकलेट ढूंढने के लिए कहां जाएंगे? हम हमारी कंपनी लेकर आएंगे, कैडबरीज. कहां की कंपनी है ये? ये है यूके की कंपनी. तो कैडबरीज लेकर आएंगे और जब कैडबरीज कंपनी हम यहां पर एस्टैब्लिश करेंगे तो बचपन से बच्चों को जो हम गणित सिखा रहे हैं उसके अंदर गणित सीखते सीखते वो क्या और सीख रहे हैं कि कैसे बचपन से 10 चॉकलेट खाना. अब मैं बताता हूं कि उन्होंने ये मैथमेटिक्स का एक सम कैसे चेंज किया, यही मैथमेटिक्स का सम हमारे गणित की पुस्तक में अंग्रेजों के आने के पहले क्या था, अंग्रेजों के आने के पहले यह सम किस प्रकार से प्रेजेंट किया था। आई हैव 10 रुपीज एंड आई गिव 5 रुपीज टू अ नीडी पर्सन, हाउ मेनी डू आई हैव नाउ। तो इसके अंदर संस्कार क्या दिए जा रहे हैं बच्चे को कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 5 रुपए किसी दीन दुखियारे को दे रहा हूं उसकी मदद करने के लिए। तो उसको क्या संस्कार दिए जा रहे हैं बचपन से कि बेटे कैसे मदद करनी है। तो अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर हमको क्या बनाया, उपभोक्ता। दे सिंपली मेड अस इनटू अ कंज्यूमर। सो देर वाज नो एजुकेशन विच दे वांटेड टू गिव, दे सिंपली वांटेड टू मेक अस इनटू देयर स्लेव्स एंड कंज्यूमर। तो ये मैं बता रहा हूं कि हमको लग रहा होगा कि ये वीडियो गेम, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि बच्चे को वीडियो गेम दो पूछता है हाउ टू प्ले, माला हाथ में दो तो पूछता है व्हाई टू चैंट। तो ये सारी चीजें, ये मत समझो कि ये सारी चीजों से प्रगति हो रही है आजकल के बच्चों की। कुछ उनको थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा, लेकिन उसके साथ हम आप लोग सब भी जानते हैं कि उसके साथ साथ हो क्या रहा है कि जो गार्बेज है पूरे विश्व का वो उनको उनके दिमाग में घुसाया जा रहा है। सो देयरफॉर ये जो इनके एडिक्शंस हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ मीडिया, ये सारी चीजें हैं। फिजिकली लेजी डल्स द इंटेलिजेंस, लूजेस ह्यूमन इमोशंस एंड हॉरिफिक इंप्रेशंस। कि बच्चे जो हैं आजकल वो जिस प्रकार की भाषा बोलना शुरू किए हैं, जैसे मैं हमारे संडे क्लास में बता रहा था, हाल ही में मैं बॉम्बे गया पिछले हफ्ते, तो एक परिवार उनके पिता बता रहे थे कि उनकी 12th स्टैंडर्ड की लड़की, उसको फॉरेंसिक साइंस में जाना है। अब अगर आप जानते हैं फॉरेंसिक साइंस क्या होता है कि जब कत्ल होता है, मर्डर होता है, क्राइम कहीं पर होता है, तो जो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट होता है वो लोग उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये सब देखते हैं कि कत्ल कैसा हुआ, कुछ वहां पे सुराग छोड़े हैं क्या। तो मैंने खाली इतना पूछा कि व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दिस फील्ड, तो उसने उत्तर दिया डेड बॉडीज। व्हाट अट्रैक्टेड हर टुवर्ड्स फॉरेंसिक साइंस वाज डेड बॉडीज। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक 12वीं कक्षा की एक लड़की और उसका अट्रैक्शन डेड बॉडीज से। तो मैंने फिर पता लगाया कि इसका अट्रैक्शन डेड बॉडीज से इतना कैसे हुआ, क्यों हुआ। टेलीविजन में जो उस प्रकार की हॉरर मूवीज देखकर, उनकी उसकी फेवरेट मूवीज कौन सी थी, हॉरर मूवीज, भूत प्रेत की ये सारी पिक्चर, तो उसमें सब उसमें दिखाते क्या है, ये सब ही दिखाते हैं। तो ये सब देख देख के सोचो उसका अट्रैक्शन जागृत हो गया किसके प्रति, ये सब डेड बॉडीज के प्रति। तो आप ये मत समझिए कि बच्चा टीवी में है ना खाली डिस्कवरी चैनल देख रहा है, बहुत कुछ और डिस्कवर कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि अरे वो तो इंफॉर्मेशन ले रहा है वहां से, इंटरनेट से, टीवी से इंफॉर्मेशन ले रहा है, और उसके साथ उसका कहां पर किस दिशा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं देख रहा है। तो ये जो इल इफेक्ट्स हैं मीडिया के। फिर हाउ पेरेंट्स शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। एवरी एक्ट, वर्ड एंड मूव शुड बी एग्जेम्पलरी। डोंट जस्ट प्रेजेंट समवन एल्सेस एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, दैट यू शुड बी लाइक महात्मा गांधी, यू शुड बी लाइक छत्रपति शिवाजी, यू शुड बी लाइक दैट। First question again they will ask is, what about you? So every act of the parent is like that. Children should make their parents as their first role models. Parents should command respect and not demand. How will parents command respect? By their example. Jo aaj ke shlok mein Bhagwan bol rahe hain, acharan ke dwara. Common mistakes using abusive language. Common mistakes done by parents here. Please note. Frivolous behavior all in front of children. Yelling and quarreling. Unethical lifestyle. इसमें एक एक example हम लेंगे कि कैसे होता है. Situation of abusive language in front of children. ये एक case study आपके सामने रखा है. Dad is telling, go get my car keys. Child is asking a simple question, which one is it? Sometimes the dad, he answers, you idiot, you can't even recognize my car key from other keys. तो उसने शुरुआत कहां से की? उसको abusive language बोलकर. तो फिर वो क्या करने वाला है अब आगे चलकर? वो उसके छोटे भाई को उसी प्रकार से गाली देगा बड़ा होकर, या उसके बेटे को भी उसी प्रकार से बड़ा होकर गाली देने वाला. So how abusive language, sometimes mindlessly one speaks. Then frivolity, frivolous behavior in front of children done by parents. Father pinching the kid just to irritate him more. अब बच्चा जो है वो माता पिता को एक स्तर का मानता है कि इनकी एक उम्र है, इनकी एक आयु है, इनका एक पद है और इनका एक व्यवहार होना चाहिए जब वो देखता है और कहीं पर इनकी आयु के लोग कैसे व्यवहार करते हैं. लेकिन जब माता पिता उसको छोड़कर बच्चों के साथ जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ बिहेविंग इन एन अनसिविलाइज्ड मैनर इन फ्रंट ऑफ द किड्स, अगेन दैट इज बीइंग वेरी फ्रिवलस एंड अनकल्चर्ड, टीचिंग द चाइल्ड समथिंग विच द चाइल्ड शुड नॉट बी. येलिंग मतलब चिल्लाना उसके ऊपर. सन ब्रेक्स हिज फादर स्पेक्स, You ugly pig, why did I beget you at the first place? और ये सारे उदाहरण, ये मैं कोई exaggerated उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ये सारे उदाहरण होते हैं. जैसे मेरा एक मित्र था हमारे बैच में, हरियाणा का था वो, और बोले कि हरियाणा में जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो बोल रहा था कि अगर मैं मेरे पिताजी से टाइम भी पूछता हूं तो हरियाणा में वो लोग जिस प्रकार की भाषा बोलकर उत्तर देते हैं, टाइम क्यों पूछ रहा है, मरेगा के. वो हरियाणा का लहजा इस प्रकार से, अरे मरेगा के, टाइम क्यों पूछ रहा है. वो बता रहा था कि हरियाणवी पिताजी बहुत 100% कॉन्फिडेंट होते हैं. एक हरियाणवी पिताजी वो अपने बेटे को कूट रहा था. कूटना समझते हैं आप, एक होता है मारना, एक होता है कूटना. तो अपने बेटे को कूट रहा था तो किसी ने पूछा कि भैया क्यों इतना मार रहे हो. बोले कल इसका रिजल्ट है. तो कल है ना रिजल्ट. बोला कल रिजल्ट है, आज मैं बाहर जा रहा हूं. तो उसने कहा हरियाणवी पिताजी 100% कॉन्फिडेंट कि फेल ही होने वाला है. सो येलिंग एंड फाइनली अनएथिकल अप्रोच. अब ये बच्चे जो हैं, ये जो अनएथिकल अप्रोच है, ये बच्चे बाहर से ज्यादा कई बार वो देखते हैं अपने माता पिता के जीवन में, क्योंकि बाहर देखेंगे तो इतना असर उनके ऊपर नहीं पड़ता जितना जब अपने माता पिता के जीवन में अनएथिकल अप्रोच या अनैतिक या बिना नीति के काम किए हुए. जैसे यहां पर सिचुएशन दिया गया है, पिताजी कह रहे हैं, इफ द टिकट क्लर्क आस्क यू योर एज, जस्ट टेल हिम दैट यू आर 4 years ओल्ड. बच्चा बेचारा सच बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने अपना 5वां जन्मदिन ही मनाया पिछले हफ्ते, आप ही केक लेकर आए थे, उस पर 5 मोमबत्ती लगाई थी. तो पिताजी बोलता है, जस्ट डू एज आई से, इट्स जस्ट फॉर नाउ, वी विल सेव 5 rupees. सो यू विल सेव 5 rupees, बट यू हैव डिस्ट्रॉयड योर इमेज इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, फॉर विच यू हैव टू पे नॉट जस्ट 5 more, बट मेनी लैक्स एंड मिलियंस मोर, जस्ट फॉर सेविंग दिस 5 rupees नाउ. तो फिर यहां पर सोल्यूशन है बिकमिंग फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द चाइल्ड, कि बच्चे के जो अलग अलग एजेस आते हैं, चाणक्य बताते हैं कि जो पुत्र होता है उसके जो अलग अलग एजेस आते हैं उसमें माता पिता उसके एज के अनुसार कई बार उसके फ्रेंड बनते हैं, उसके फिलोसोफर बनते हैं, उसके गाइड बनते हैं। हालांकि एक एक साइड में बहुत डिटेल्स में हम जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल टाइम की कमी होने के वजह से हम केवल संक्षिप्त रूप में टेक होम मैसेज देना चाहते हैं कि क्या पेरेंट्स का रोल होना चाहिए। तो टेक होम मैसेज ये है, चिल्ड्रन जनरली शुड ओबे देयर पेरेंट्स बट वेर एवर पेरेंटल वैल्यूज आर वीक द पेरेंट्स ओबे देयर चिल्ड्रन। ये बहुत डीप पॉइंट है कि जनरली बच्चों को उनके पिताजी के आदेशों का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं है तो फिर उनको आगे चलकर जो बिगड़ी हुई औलाद है उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। ये मतलब है इसका। इफ यू कैनॉट प्रिपेयर द फ्यूचर फॉर योर चाइल्ड, एटलीस्ट प्रिपेयर हिम फॉर द फ्यूचर। देन देर शुड बी बाउंड्रीज एंड नॉट बॉन्डेज। इनडिसिप्लिन चिल्ड्रन वेन यंग मे डिस्टर्ब योर स्लीप, बट वेन ग्रोन अप कैन डिस्टर्ब योर लाइफ। सो द क्वेश्चन इज, हाउ मच डू यू वॉन्ट टू डिसिप्लिन? डिसिप्लिन शुड ब्रेक द चाइल्ड स्पिरिट, बट लैक ऑफ इट शुड ब्रेक द पेरेंट्स हार्ट। अगेन देर शुड बी अ striking balance. Rules shouldn't look like shackles to your child, but rather should look like an embrace. जब बेड़ियां बांधते हैं तो भी उसमें बंधन दिखता है, और जब कोई आलिंगन करता है तो उसमें भी किसी को बांध रहा है, लेकिन वो जो है वो प्रेम का बंधन है। तो रूल्स कैसे इंप्लीमेंट करने चाहिए, उसके साथ साथ उसको उतना भरपूर प्रचुर मात्रा में प्रेम भी देना चाहिए। और यहां पर जो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि आचार्य या श्रेष्ठ का उत्तरदायित्व क्या है, कैरेक्टर वर्सेस एकेडमिक्स, टू काइंड्स ऑफ एजुकेशन, वन दैट हेल्प्स मेक योर चाइल्ड अ लिविंग एंड वन दैट मेक्स हिज लाइफ। टू नो हाउ टू रीड इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज टू नो व्हाट टू रीड। कई बार माता पिता क्या सिखाते थे, हाँ मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ लिख कर क्या पढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वीडियो में देखा, द मोस्ट वैल्यूएबल इनहेरिटेंस इज वैल्यूज एंड एथिक्स। यदि हमें जायदाद रखनी है बच्चों के लिए तो कौन सी जायदाद रखनी चाहिए? हमारे उदाहरण, हमारे आदर्श, ये जायदाद, न केवल करोड़ों की जायदाद पैसों के रूप में। फर्दर, टीचिंग देम हाउ टू चूज बिटवीन टू राइट थिंग्स, नॉट जस्ट टीचिंग देम व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, दैट इज समथिंग इवन एनिमल्स दे टीच देयर ऑफस्प्रिंग्स, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। Teaching them how to stand by commitments by being committed. Teaching them how honor is more important than degree of honors and all that stuff. And finally, what is real success? How being human is more important than human being. How integrity is more important than grades. How character is more important than competence. How values are more important than fortune. And finally, how acts of kindness are more important than winning medals and trophies. कई बार माता पिता को लगता है कि मेरे बच्चे शेल्फ में जितनी ट्रॉफी मेडल्स ला के रखते हैं तो मेरा बच्चा बहुत प्रगति कर रहा है, बट हैव वी टॉट देम सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस टूवर्ड्स पीपल, ह्यूमैनिटी एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये फाइनल हमारा स्लाइड है, लर्निंग पेरेंटिंग फ्रॉम कृष्णा। तो फिर से गीता पे आ रहे हैं, अगर आप यहां वहां चले गए होंगे तो हमारा गीतामृत का कार्यक्रम चल रहा है। कृष्णा स्पोक ओनली व्हेन अर्जुन वाज रेडी टू हियर। यहां पे बहुत ही सही तरीके से भगवान अपने उदाहरण से कैसे एक श्रेष्ठ शिक्षक को अपने डिपेंडेंट को सिखाना चाहिए, एक गुरु को कैसे शिष्य को सिखाना चाहिए, भगवान सिखा रहे हैं। फिर After speaking Gita, Krishna gave Arjun his independence to either accept or reject. Krishna ऐसे शिक्षक नहीं बने कि अब छड़ी लेकर कि जो मैं बोल रहा हूं वही करना है। स्वतंत्रता दी किसको? अर्जुन को स्वतंत्रता दी। But only after presenting the consequences of making whatever choice he will make. तो स्वतंत्रता भी देनी है अगर बच्चों को, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनको एहसास दिलाएं कि यदि वो गलत चयन करेगा अपनी स्वतंत्रता का तो उसके परिणाम क्या होंगे, और सही करेगा तो उसके परिणाम क्या होंगे. एंड फाइनली कृष्णा वॉज विलिंग टू स्पीक वंस अगेन द होल गीता इफ अर्जुन डिडंट अंडरस्टैंड. तो माता पिता और जो भी श्रेष्ठ हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यदि जो हम पर निर्भर हैं उनको यदि कुछ समझ में नहीं आए तो हम फिर से सेमिनार चालू कर सकते हैं. तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसलिए हालांकि ये एक डेढ़ घंटे में हम केवल संक्षिप्त रूप से समझ सकते हैं ब्रॉड कैटेगरीज की, हम कितने पानी में हैं और हमें क्या करना है. और इसलिए आज के श्लोक का यदि मर्म हम निकालें, निचोड़ निकालें, तो जो कुछ हमने आज सुना, देखा, जो कुछ सीखा, उसको जब तक हम आचरणों में नहीं लाएंगे, वही भगवान बोल रहे हैं, तब तक जन साधारण जो है वो, क्योंकि आचरण कुछ ना कुछ तो होंगे, या तो सदाचार होगा या दुराचार होगा, कुछ तो आचरण होगा. और जन साधारण चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, वो उसको फॉलो करने ही वाले हैं. इसलिए अब हम जो अगले भाग दो में डिस्कस करेंगे वो हम स्पिरिचुअल लीडरशिप, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे, जो यहां पर तो श्रेष्ठ की परिभाषा देखते हुए हमने केवल माता पिता को लिया, क्योंकि साधारणतः ऑडियंस कलयुग में वही होने वाले हैं, डेमोक्रेसी है, वहां पर कोई राजा वगम तो होने नहीं वाले. तो डेमोक्रेसी को भी यदि हम लें, और नेताओं को भी यदि हम लें, और शिक्षकों को भी यदि हम लें, गुरुओं को भी यदि हम लें, तो कैसे उनको स्पिरिचुअल लीडर बनना है, तो इसकी चर्चा हम भाग दो में करेंगे. क्योंकि ये भाग एक ही थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिवाइड कर दो भाग में करेंगे, क्योंकि ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है. इसलिए आज हम केवल यहीं पर विराम देते हैं अपने कथा को, कि भगवान विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का जो संदेश है और आज के श्लोक का जो संदेश है उसमें माता पिता जो श्रेष्ठ हैं किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, वो अपना आचरण कैसे निभाएं, ये है फाइनल हैप्पी पेरेंटिंग. मुझे याद है, जस्ट मैं एक इससे एंड करूंगा, मुझे एयरफोर्स में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा था, और वो प्रेजेंटेशन मतलब ऐसे था, वो एक निबंध जिसको कहेंगे ऐसे. तो प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर था कि बच्चे और माता पिता ये सब. मुझे याद है उसके अंदर हमने लिखा था, पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, आज स्थिति ये है कि माँ बाप मेरे साथ रहते. तो पूरा निबंध इसके ऊपर ही था, पहले मैं मां बाप के साथ रहता था, आज स्थिति यह है कि मां बाप मेरे साथ रहते हैं. और इस सफर के दौरान जो मेरे मां बाप ने इतने कष्ट उठाए, कितनी रोटियों की कुर्बानी उन्होंने दी मुझे नालायक से लायक बनाने के लिए, मैं केवल यही सीख देना चाहता हूं आजकल की पीढ़ी को, कि हम जो पहले नालायक थे, हमारे माता पिता के वजह से लायक बने, हम इतने लायक कभी ना हो जाएं कि हम अपने माता पिता को रहने लायक ना बनाएं. तो मुझे अभी भी याद है ये उसकी लास्ट लाइन थी ऐसे की, तो इसे मैं खत्म करना चाहता हूं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. तो भाग दो फिर से हम यही श्लोक लेने वाले हैं अगले गीतामृत में, और उसमें हम देखेंगे कि हमारे शास्त्रों का आधार पर स्पिरिचुअल लीडरशिप की कौन कौन सी शिक्षाएं हमारे शास्त्र सिखाते हैं. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.